दिन भर तारीख 10 मई दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इसराइल ने सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों को किया ध्वस्त। इसराइली रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी, अगर यहां कुछ भी होता है तो नतीजा वहां भुगतना होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। गुड़गांव में जुमे की नमाज पर क्यों हुआ विवाद? क्या मुसलमान जानबूझकर सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करते हैं?
हम क्यों खुले में आएंगे? धूप में, बरसात में, पानी की सुविधा नहीं, आने जाने की सुविधा नहीं, हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हमारे लिए अच्छी बात अगर मस्जिद गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर इसराइल को उकसाने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान की बेतुकी हरकतों का जो असर होगा उसके लिए उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ही जिम्मेदार होंगे। इससे पहले इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर ये कहते हुए हमले शुरू कर दिए थे कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सीरियाई ठिकानों से गोलन हाइट्स में मौजूद इसराइल के सैन्य ठिकानों पर 20 मिसाइलें दागी हैं। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया से रिहा किए गए 3 अमरीकी नागरिकों का स्वागत करने के लिए वाशिंगटन के बाहर मौजूद एंड्रयूज एयरफोर्स हवाई अड्डे पहुंचे। ये तीनों विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ उत्तर कोरिया से अमरीका पहुंचे हैं। इस मौके पर ट्रंप ने कहा,
ग्रेट थिंग्स कैन हैपन एंड दैट्स व्हाट वी होप, सो आई वांट टू थैंक यू ऑल, इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग।
आपके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये सवेरे का वक्त है और आप सब लोगों ने सवेरे के 3 बजे कार्यक्रम में आकर आज टेलीविज़न का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, लेकिन मैं इन 3 महान लोगों को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपका स्वागत है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। उत्तर कोरिया की सरकारी हवाई सेवा एयर कोरियो ने घोषणा की है कि वो प्योंगयांग और दक्षिण पश्चिमी चीन के बीच नई हवाई सेवा शुरू करेगी और चीन के साथ देश के दोस्ताना संबंधों को आगे बढ़ाएगी। बताया जा रहा है कि चीन के चेंगडू और उत्तर कोरिया की राजधानी के बीच इस साल जून में चार्टर्ड उड़ानें शुरू की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए अधिक चीनी पर्यटक उत्तर कोरिया पहुंचेंगे और इससे संयुक्त राष्ट्र के लगाए प्रतिबंधों में भी राहत मिलेगी। कीनिया में भारी बारिश के कारण नदी पर बना एक बांध टूट गया है, जिस कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। कीनियाई रेड क्रॉस का कहना है कि 45 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अब तक कई लोग लापता हैं। हादसा राजधानी नैरोबी के उत्तर पश्चिम में 200 किलोमीटर दूर सोलई में हुआ, जहां फिलहाल बचाव और राहत कार्य जारी हैं। देश की नाकुरू काउंटी असेंबली के सदस्य पीटर एम्बे ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
Kuna watu zaidi ya 50 ambao wamepelekwa hospitali ya Subukia
na hadse mein 50 se adhik log ghayal ho gaye hain aur unhe Subukia mein aspatal mein bharti karaya gaya hai. Hame is baat ki bhi chinta hai ki yahan rehne wale kai logon ke bare mein ab tak koi jankari nahi mil payi hai aur hame dar hai ki wo malbe ke niche dabe ho sakte hain. Khaaskar nichle ilakon mein rehne wale log isse adhik prabhavit ho sakte hain. Nakuru County Assembly ke sadasya Peter Embe ke shabd aap sun rahe hain BBC samachar. इच्छा मृत्यु की चाह रखने वाले और इसके संबंध में अभियान चलाने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड गुडॉल ने अपना सफर खत्म कर लिया है। 104 साल के डेविड गुडॉल ने स्विट्जरलैंड के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वो गंभीर रूप से बीमार नहीं थे, हालांकि उनका कहना था कि उनका जीवन मुश्किल हो रहा है और जीने की उनकी इच्छा खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड तक उनके सफर में साथी बनी एग्जिट इंटरनेशनल संस्था ने कहा है कि डेविड गुडॉल की मौत शांतिपूर्ण रही और उन्होंने बीथोवन का संगीत सुनते हुए अपनी आंखें मूंद ली। मलेशिया के राजमहल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वरिष्ठ नेता महातिर मोहम्मद को देश के नेता के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसी सप्ताह हुए आम चुनावों में 92 साल के महातिर मोहम्मद ने सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नजीब रजाक को हरा दिया था। वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। इसराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। इसराइल का कहना है कि उसने सीरिया में मौजूद ईरान के लगभग सभी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करके उन्हें नेस्तनाबूद किया है। इसराइल का कहना है कि ये उन ईरानी रॉकेट हमलों का जवाब है जो कि गोलन पहाड़ियों पर उनके सैन्य अड्डों पर दागे गए थे। इसराइल के रक्षा मंत्री एविगडर लाइबरमैन ने कहा, हाँ, हमने सीरिया में ईरानी ढांचों को निशाना बनाया, एक आध नहीं बल्कि सारे। उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ होता है तो नतीजा वहाँ भुगतना होगा। मुझे उम्मीद है कि हमने ये चैप्टर बंद कर दिया है और हर किसी को ये संदेश मिल गया होगा, इसराइल के रक्षा मंत्री के शब्द। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने देशों से संयम बनाए रखने की अपील की है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत से।
इसराइल ने सीरिया में ईरान के कई सैन्य अड्डों पर हवाई हमले किए। सीरियाई कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। इसराइल का कहना है कि उसने ऐसा जवाबी कार्रवाई के तहत किया। उसका आरोप है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गोलान की पहाड़ियों यानी गोलान हाइट्स पर मौजूद इसराइली सैनिक अड्डों पर सीरिया से करीब 20 रॉकेट दागे थे। इसराइली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने बीबीसी से कहा,
हमने 70 अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये सभी ठिकाने ईरान के थे। इन हवाई हमलों में हमने उनके सैन्य अड्डों, मुख्यालय, खुफिया सेवा, गोला बारूद को निशाना बनाया है। इन हमलों का मकसद ईरान के ऑपरेटिव्स को मारना नहीं बल्कि सीरिया में उनकी सैन्य मौजूदगी स्थापित करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना था।
ये थे इसराइल के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस के शब्द। इसराइल का आरोप है कि ईरान उस पर हमले करने के लिए सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था।
हालात तनावपूर्ण हैं। हमने जवाबी कार्रवाई खुद की रक्षा के लिए की। हम अपनी संप्रभुता और गोलान हाइट्स में रहने वाले अपने नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम सीरिया में ईरानी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वहां होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इसराइल को डरा सके।
ये थे इसराइल के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस के शब्द। गोलान हाइट्स दोनों देशों के लिए राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खासा महत्व रखती है। ये दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। इसराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की सेना तभी से युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 1981 में इसराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी, लेकिन इसराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई। गोलान हाइट्स की चोटी से दक्षिणी सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आते हैं। गोलान हाइट्स से इसराइल को यह फायदा मिलता है कि वो यहां से सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नजर रख सकता है।
इसराइल ने सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान के पास चलते हैं। सीधे कार्यक्रम में आप शामिल हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो मामला है इसराइल, सीरिया और ईरान, अभी हमको शुरुआती दौर में 3 पक्ष नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 पक्ष और भी हैं, अमेरिका और रूस। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या ये मध्य पूर्व में किसी बड़े संकट या फिर संघर्ष की आहट तो नहीं है?
देखिए, पिछले 1 साल से बाज ऐसे कहिए प्रॉफिट्स ऑफ डूम अमेरिका में ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी महायुद्ध अगर शुरू होगी तो वो सीरिया से शुरू होगी। बेसिकली ये कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, अगर उसमें एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली रशिया इन्वॉल्व हो जाता है तो ये बिल्कुल एस्केलेट हो सकती है। लेकिन अगर ये ईरान और इसराइल के बीच में भी अगर महदूद होती है जंग, तो ये काफी बड़ी चीज है मिडल ईस्ट के लिए। पॉलिटिक्स की सूरत हाल बदल देगी। और आप देख रहे हैं जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो इस बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं कि ये फाइट गोलान के ऊपर है जो इसराइल ने अरब जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह से अरब स्ट्रीट में भी ईरान की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी जब ये लगेगा कि ईरान एक अरब जमीन के लिए लड़ रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ इसराइल है जो कि वहाँ पर गोलान हाइट्स पर उसने ईरानी ठिकानों पर गोलीबारी की, मतलब रॉकेट दागे और ख़त्म कर दिया, और चेतावनी भी है आगे।
देखिए हर छोटे स्कर्मिशेस हो या बड़े, तो वो तो इसराइल जीतेगा, ये वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पावरफुल और मजबूत है, लेकिन ये अगर मुसलसिल, अगर ये रोज़ाना रोज़मर्रा का हो जाएगा हाल के वहाँ से प्रोवोकेशन होगा, फिर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिटेलिएशन करेंगे, तो ये तो ना तो इसराइली पॉपुलेशन के लिए सुकून मंद है, और कॉन्स्टेंट एंगजाइटी, वो बेसमेंट में छुपे रहेंगे। तो ये बेसिकली ईरानियन न्यूक्लियर डील से अमेरिका का विड्रॉ होने का ये भी एक साइन है कि इसराइल अब सुकून से नहीं सो सकेगा।
एक तरफ इसराइल के साथ में खड़ा नजर आएगा भविष्य में अमेरिका, और उधर जो है वो रूस अपना फ्रंट खोलेगा।
दूसरी चीज ये भी है कि ये जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की हम इतने सालों से बात कर रहे थे, वो तकरीबन खत्म हो गई है। अब अरब और इजरायल मिलकर ईरान को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो ये एक न्यू जियोपॉलिटिक्स है जहां पर अरब्स खुद अपने ही इलाके में टोटली मार्जिनलाइज हो गए हैं, और बड़े प्लेयर्स तो बाहर से हैं, ईरान, तुर्की, रशिया।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुख्तार खान, और इस कार्यक्रम में अमरीका की डिलीवर यूनिवर्सिटी से इस कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
कर्नाटक में आज का दिन विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक जीतने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने राज्य सत्ता बचाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत दोनों ही दलों के सभी दिग्गज प्रचारकों ने मतदाताओं का रुख अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्या कुछ हुआ, सुनिए बंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में।
इसमें किसी को भी शक नहीं है कि कर्नाटका के चुनाव पर सारे देश और शायद दुनिया की आंखें लगे हुए हैं। इसका महत्व यह है कि कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव हैं, और उसके बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस प्री सेमीफाइनल चुनाव में हर कोई कहा है किसने अच्छा काम किया है और किसने नहीं। कुछ महीनों से कर्नाटका में अभियान करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से आज कहा, हमारी पार्टी ने एकजुट होकर इस चुनावी अभियान में भाग लिया है। ये चुनावी अभियान बुनियादी मुद्दों पर बहुत ही अच्छा चला है, जबकि हमारी विरोधी दल ने मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया, सिद्धरामैया जी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर भी किया। ये थे राहुल गांधी के शब्द। चुनावी अभियान में बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो कर्नाटक के विषयों पर सीमित नहीं थे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के उस बयान पर टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो बयान दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने किसी भी मौका नहीं छोड़ा कांग्रेस और खासकर सिद्धरामैया को निशाने पर रखने के लिए। उन्होंने कहा,
कर्नाटक के अंदर लगभग 50,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा हुई है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि आजाद भारत की सबसे विफल और निकम्मी सरकार सिद्धरामैया सरकार है। कर्नाटक की जनता जगह जगह पर कर्नाटक की जनता का गुस्सा सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ अनुभव करने को मिला है, देखने को मिला है, और बहुत वोकल होकर कर्नाटक की जनता ने इसको सार्वजनिक किया है।
मई के पहली तारीख से कल तक प्रधानमंत्री ने 6 दिन कर्नाटक में अभियान किया, और आज सुबह बीजेपी के SC ST सेल के कार्यकर्ताओं से कहा,
अंतःकरण पूर्वक हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, भारत में आज सामाजिक समरसता का संदेश लेकर जो राजनीतिक दल सबसे प्रखर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है, और यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा SC ST OBC इस वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। इस वर्ग से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो या माइनॉरिटी हो, भाजपा सभी को
एक साथ आगे लेकर के बढ़ रही है।
कांग्रेस के नेताओं ने भी मोदी को नहीं बख्शा। सिद्धरामैया ने बहुत समय उनको आड़े हाथों लिया, खासकर दलित और ओबीसी के विषयों पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, अगर वो सचमुच सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता रखते तो वो संविधान को बदलने की बात भी नहीं करते। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, और अगर नहीं तो उन्हीं के एक पूर्व सदस्य और पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ शिकायत क्यों करते थे। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। बहरहाल चुनावी अभियान तो खत्म हो गया है। 12 मई को चुनाव होगा और नतीजे 15 मई को आएंगे। उस दिन देखना होगा किसकी बात भरोसेमंद थी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
सहारनपुर में भीम आर्मी के एक सदस्य की मौत के बाद बना तनाव अब भी कायम है। हालांकि सचिन वालिया की अंत्येष्टि के बाद गांव में शांति है, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सचिन वालिया की अंत्येष्टि में पहुंचे लोगों की संख्या और उनके गुस्से से लगता है कि ये शांति स्थायी नहीं है। सुनिए सहारनपुर से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पोस्टमार्टम के बाद सचिन वालिया का शव जब उनके गाँव रामनगर लाया गया तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और गम की वजह से पसरा सन्नाटा जैसे टूट पड़ा। गांव में स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी और आरएएफ के जवान बुधवार शाम से ही तैनात थे। रात में पोस्टमार्टम को लेकर सचिन वालिया के परिवार और पुलिस वालों में काफी देर तक गहमा गहमी होती रही। परिवार वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसके बाद ही परिवार के लोग पोस्टमार्टम और फिर सचिन की अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए। सचिन के परिवार का आरोप है कि महाराणा प्रताप जयंती के आयोजकों ने उनकी हत्या की है, क्योंकि भीम आर्मी के लोग जयंती की अनुमति देने पर प्रशासन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि दलितों को आम्बेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। पुलिस ने जयंती के आयोजकों दीपक राणा, शेर सिंह राणा, उपदेश राणा और नागेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सचिन की मौत गोली लगने से हुई बताई जा रही है, लेकिन गोली कैसे लगी इस पर पहले भी संदेह था और अभी भी संदेह है। इस सवाल पर सहारनपुर के एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह का बेहद संक्षिप्त जवाब था।
गनशॉट इंजरी है, गनशॉट इंजरी, एक उसे गोली से मृत्यु हुई है, उसकी गोली लगने।
पुलिस का ये कहना है कि सचिन अपनी पिस्टल है वो देसी तमंचा वो अपना साफ कर रहे थे और इस दौरान उससे गोली अचानक चल गई और वो गोली उन्हीं को लग गई जिससे उनकी मौत हो गई है।
हाँ देखिए ऐसा है, जिससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये एंगल भी है उसमें जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना।
सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार एम रियाज हाशमी कहते हैं कि गांव में सन्नाटा भले ही पसरा है, लेकिन ये तूफान के पहले वाली खामोशी भी हो सकती है।
कि एक तरफ दलित पक्ष के युवक की मौत हो गई है और दूसरी तरफ राजपूत पक्ष के जो लोग हैं वो नेम्ड हो गए हैं, तो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो लोग भी उत्तेजित हैं और जिनका नौजवान मरा है वो लोग भी उत्तेजित हैं, तो ये मामला अभी बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। ये 4 लोग मेन रूप से संस्थापक हैं भीम आर्मी के, उन 4 में कमल वालिया 1 महीने पहले जेल से छूट करके आए हैं, बाकी 3 लोग अभी जेल में हैं, तो अभी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते।
दरअसल पिछले साल इसी मुद्दे पर और इन्हीं लोगों के बीच हुए जातीय संघर्ष में कई लोगों की मौत हो गई थी और सहारनपुर हफ्तों अशांत बना रहा। लोग अफवाह न फैलाएं और अफवाहों में न आएं, इसके लिए प्रशासन ने बुधवार से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, जो अभी भी बंद हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी सहारनपुर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों और जवाहरलाल नेहरू के बीच मत विरोधों का जिक्र किया। राजनीति के अखाड़े में फौज का जिक्र कितना उचित है? क्या फौज को राजनीति से अलग नहीं रखा जाना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में पिछले 15-20 दिनों में हिंदूवादी संगठनों ने लगभग आधा दर्जन बार जुमे की नमाज के दौरान हंगामा मचाया, नमाजियों को प्रार्थना छोड़ जाने के लिए मजबूर किया और इनका तर्क यह है कि मुसलमानों को सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होती है और जब मस्जिदें हैं तो लोग सरकारी ज़मीनों पर क्यों नमाज पढ़ें। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने गुरुग्राम जाकर इस मामले की पड़ताल की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
वजीराबाद के मैदान में जमा 400 से 500 मुसलमान नमाज के लिए खड़े होने को ही थे कि तभी कुछ लोग नारे लगाते वहां घुस आए।
जल्दी जल्दी।
जाहिर है नमाजी तीतर बितर हो गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया लेकिन मामला थमा नहीं।
करवाओ जी प्रशासन से कार्रवाई।
इस पर करवाओ कार्रवाई।
जो हमारी मातन काट काट देकर लग रहा।
पिछले कुछ माह से मुसलमानों को लगातार सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना अदा करने की धमकियां मिलती रही हैं। इमामों को डराए धमकाए जाने की शिकायतें भी मुस्लिम समूह करते रहे हैं लेकिन हाल में कई बार हंगामा मचाकर नमाज रुकवा दी गई और कई दफा तो पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस कमिश्नर संदीप अहिरवार कहते हैं,
देखिए अगर कोई कानून की अवेल ना कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी। पहले जो हुआ दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वही कानून के अंतर्गत उस एक मुकदमे में हमने कुछ कार्रवाई की थी और वो उसका तफ्तीश चल रही है, उसमें जो आगे एविडेंस आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करें।
गुड़गांव के एक छोटे से क्षेत्र में वजीराबाद जैसे इलाके में कुछ लोग जाकर नमाज पढ़ने लगे। पिछले कुछ दिनों से जब ये नमाज पढ़ रहे थे उन्हीं के बीच से आवाज़ आई, पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो गांव के जो कुछ जागरूक लोग हैं उन्होंने उनको ऐसा करने से मना किया। उनकी आपस में कहा सुनिए, उन्होंने जब कहा तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, विवाद बढ़ा, वे लोग नमाज छोड़कर चले गए। इस बीच उनका जो वीडियो बना वो वीडियो वायरल हुआ।
अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय प्रभारी राजीव मित्तल के मुताबिक जुमे की नमाज पर विवाद की शुरुआत इस वजह से हुई। मित्तल के घर पर ही हमारी मुलाकात होती है अभिषेक गौर से।
ऐसे कुछ लोग संज्ञान में आए हैं जो लोग सिर्फ यही काम करते हैं कि कौन सी खाली जगह, सरकारी जमीन खाली पड़ी है जहाँ पे नमाज डाइवर्ट करी जाती है। उनकी मंशा सिर्फ वहाँ पे जो सरकारी जमीनें हैं उनके ऊपर वहाँ नमाज पढ़ाना, फिर उसके बाद लोग ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है बेसिकली।
हिंदुत्व समूह जुमे के जमावड़े को शक्ति प्रदर्शन के उदाहरण के तौर पर भी पेश कर रहा है लेकिन वजीराबाद जहाँ से विवाद की शुरुआत बताई जा रही है वहाँ मौजूद एक मस्जिद लंबे वक्त से अवैध कब्जे में है और मुसलमान वहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते। हरियाणा वक्फ बोर्ड के मुताबिक शहर में कम से कम ऐसी 9 मस्जिदें हैं जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़ी जानी चाहिए वाले बयान ने मामले को और उलझा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद में बयान पर सफाई भी दी लेकिन फिल्म निर्माता राहुल रॉय उसे काफी नहीं मानते।
नहीं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों लेता है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हैं वो लोग अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे तक जाता है उसका असर।
राजनीतिक दल स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम पूरे विवाद और बयानों में एक सोची समझी राजनीतिक चाल देखते हैं।
बिल्कुल अन्यथा ही एक मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है जिससे कि किसी तरीके से कम्युनल लाइंस पे पोलराइज किया जाए सोसाइटी को और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाए जो हम पिछले कई सालों से देख चुके हैं अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग प्रिटेक्स्ट पे ये किया जा रहा है।
तो इसके पीछे फ़ायदा क्या हो सकता
है? देखिए फ़ायदा तो हम जानते हैं कि जब धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश होती है तो उसका फ़ायदा किन लोगों को, किन पार्टियों को पहुँचता है।
लेकिन आखिर गुड़गांव के मुसलमान सरकारी ज़मीनों, पार्कों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं? कभी 50,000 की आबादी वाला गुड़गांव अब 15 लाख से अधिक लोगों का बसेरा है जिनमें कम से कम 3 लाख के आसपास मुसलमान हैं। जुमे की सामूहिक नमाज के लिए शहर की वो 13 मस्जिदें कम पड़ती हैं जिसमें कई खेप नमाज पढ़े जाने के बावजूद 18,000 से 20,000 से अधिक लोग नहीं समा सकते। नगर निवासी शहजाद खान कहते हैं कि मुसलमान शौक से सड़कों पर प्रार्थना नहीं कर रहे।
हम क्यों खुले में आएंगे, धूप में बरसात में पानी की सुविधा नहीं, आने जाने की सुविधा नहीं, हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है अगर मस्जिद गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
शहर में जो चंद मस्जिदें हैं वो दीवानी मुकदमों का सामना कर रही हैं। सेक्टर 56 की मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े एक व्यक्ति कहते हैं कि इन मामलों में अदालतें मस्जिद के पक्ष में फैसले देती रही हैं लेकिन फिर कोई नया व्यक्ति नए केस के साथ खड़ा हो जाता है। केस करने वालों में और मस्जिद निर्माण के खिलाफ स्टे लाने वाले लोगों में ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स बताए जाते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा समय समय पर पूजा स्थलों और दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए रियायती दरों पर जमीन देता है लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि उनका मिलना इतना आसान नहीं। मोहम्मद अरशान की संस्था ने मस्जिद की जमीन के लिए आवेदन दिया था।
दो साल पहले इन्होंने निकाला था न्यूज़पेपर में, फिर हमने एज ए प्रोसेस अप्लाई किया, फिर उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर हमने इंटरव्यू दिया और उनको अपनी बात बताई, ज़रूरत बताई कि गुड़गांव में कितनी मस्जिदों की ज़रूरत है और क्योंकि कितनी सारी पॉपुलेशन है यहाँ पर, रोड साइड पे पार्क में नमाज हो रही है, उनको अच्छी तरह से अवेयर करा दिया। तो हम वेट करते रहे, फिर एक साल बाद उन्होंने हमें हमारा पैसा वापस कर दिया और हमें बोला कि आप रिजेक्ट हो गए आपकी एप्लीकेशन।
कई बार तो हरियाणा सरकार ही मस्जिदों की जमीनों पर काबिज हो गई है और मामला अदालत तक गया है, जिसमें फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में आया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने चंद दिनों पहले 19 मस्जिदों की लिस्ट जारी की है और कहा है कि अगर प्रशासन अवैध कब्जों को खाली करा देता है और पुलिस उसे संरक्षण देती है तो वक्फ इनकी मरम्मत करवाकर अपने खर्चे से इमामों की तैनाती करने को तैयार है। वक्फ का मानना है कि इससे सार्वजनिक स्थलों पर नमाज की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। फैसल मोहम्मद अली, BBC, गुड़गांव।
और अब आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मेरा भी, मैं हूँ इंदु पांडे।
इंदु पांडे भी साथ में हैं और इंदु पांडे के साथ में हैं बहुत सारी ईमेल और चिट्ठियाँ भी। तो चिट्ठियों की बात जहाँ तक है, हमारे श्रोता थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि हम ईमेल से शुरू करते हैं। आज क्या आपकी इजाजत है कि मैं एक चिट्ठी से शुरुआत करूँ?
बिल्कुल बिल्कुल।
तो चिट्ठी तो बहुत लंबी लिखी है, 1 मई को हमारे श्रोता हैं जिन्होंने 2-4 पन्ने की चिट्ठी है, लेकिन 2 पन्ने में लिखी है। प्रगतिशील BBC रेडियो मंच, अभय कुमार निराला, बगेन बक्सर बिहार से लंबी चिट्ठी लिखी है। इस लंबी चिट्ठी में इन्होंने अपनी राय जाहिर की है तमाम विषयों पर, लेकिन BBC के जो कार्यक्रम हैं उन पर कुछ नहीं कहा है। अब आप बताइए कि उनकी राय तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर और दुनिया भर की तमाम जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन साहब जो BBC के कार्यक्रम हैं निराला साहब, उस पर भी अगर आप लिखेंगे और लिखते रहे हैं आप पहले, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये तो रही एक चिट्ठी।
इसके लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि काफ़ी निराली चिट्ठी है,
निराले जी की निराली चिट्ठी है बिल्कुल। और एक पिपरा कोठी से भी मेरे पास चिट्ठी है, उन्होंने लिखा है, आपका एक श्रोता उपेंद्र ठाकुर पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण बिहार से लिखते हैं कि मैं BBC का प्रसारण 1975 से सुनता आ रहा हूं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप कृपया महान विभूतियों स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह में से किसी पर विवेचना सुना दें, लेकिन ऐसा लगता है कि रेहान भाई ने इन पर या तो विवेचना सुना दी है या BBC को इन नामों से परहेज़ है। अब आप जानती हैं इंदु जी और हम सब जानते हैं, हमारे श्रोता जानते हैं कि परहेज़ तो हमें किसी के नाम से नहीं है।
बिल्कुल।
तो रेहान साहब तक ये आपकी गुजारिश पहुंचा दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि लोहिया जी पे या विश्वनाथ प्रताप सिंह पर कुछ हमको सुनने को मिलेगा।
तो एक ईमेल लेते हैं।
अब ईमेल लीजिए जी।
सादिक आजमी साहब सऊदी अरब से लिखते हैं कि राजेश जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपने BBC कब ज्वाइन किया था और किसे अपना आदर्श मानते हैं, और इस बात के साथ कि देखिए उत्तर जरूर दीजिएगा नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा।
अरे बस आपने ये जो कह दिया कि उदास हो जाऊंगा, तब तो उत्तर देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने इतनी दूर से चिट्ठी लिखी है, सऊदी अरब से लिखी है। दरअसल आप तो मेरा ही इंटरव्यू करने लगे। मैंने 2002 में BBC ज्वाइन किया था लंदन में और अब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ पिछले कई सालों से, 2010 से। और मेरा आदर्श कौन है, ये दरअसल बहुत ही टेढ़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग विषयों में अलग अलग आदर्श होते हैं। आपके रेडियो में आदर्श कोई दूसरे हैं, राजनीति में आदर्श कोई दूसरे हैं, कला संगीत फिल्मों में आदर्श दूसरे हैं, घर में आदर्श दूसरे हैं। तो मैं किन किन आदर्शों का नाम लूँ? हो सकता है एक आदर्श आप भी हों मेरे, क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं
जी। और ये मेल आया है इकराम हिंदुस्तानी मेवात से, लिखते हैं कि BBC मेरा पत्र कभी भी शामिल नहीं करती क्योंकि मैं आप लोगों की शिकायत करता हूं, इसलिए आप मेरे पत्र को शामिल करना ज़रूरी नहीं समझते हैं।
देखिए इनका कारण तो यहीं पे ख़त्म हो गया, शिकायत करते हैं इसके बावजूद इनका पत्र शामिल किया जा रहा है। तो लेकिन शिकायत क्या है?
शिकायत ये है कि ये कल परसों से जामिया में चल रहा जो भी खबर है उस पर तो आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक BBC लाइव कर दिया।
सिर्फ एक BBC लाइव जिसे आप कह रहे हैं, अगर आप, जाहिर सी बात है आपने उसको सुना ही होगा, फेसबुक पे हमें 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देख लिया है। छात्रों ने, छात्राओं ने जिस तरह से अपनी बातें कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मुद्दे हम लोग बार बार उठाते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चलते चलते पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003।
और समय नहीं है इसलिए आप सभी श्रोताओं से विदा लेनी होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।